ओम शांति। आज का टॉपिक है ब्राह्मण जीवन में धूप से बाल सफेद करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना, अनुभव की अथॉरिटी बनना, रूहानी अनुभव की अथॉरिटी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि धूप कि जैसे सूरज की निकलती हुई जो किरणें हैं, उससे हम क्या पाते हैं? प्रकाश, उष्मा, गर्मी, जिसको ही हम धूप कहते हैं, कि जिसका मानव जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि ऋतु चक्र है, ऋतु चक्र में बारिश, ठंडी, गर्मी, ये ऋतु चक्र भी पूरा उस धूप के ऊपर डिपेंड करता है। कि देखो, जैसे कि अनाज है, फल है, सब्जियां है, इसको भी तैयार होने में धूप की बहुत आवश्यकता होती है। और दूसरी बात है कि अगर ये सूर्य की किरणें उसको प्रॉपर रीति से मिलेंगी नहीं तो क्या होगा, वो उतना शक्तिशाली नहीं बनेगा। हमारा जो भोजन है, वो जो सब्जियां हैं, और ही क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर बीमारियां फैलेगी। वैसे चिकित्सा में भी अगर देखा जाए तो सूर्य की किरणों के बीच अलग से एक ट्रीटमेंट होती है। डॉक्टर भी सलाह देते, राय देते हैं कि धूप से सेकना चाहिए। तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में कौन सी साधन है जो धूप का काम करते हैं? तो मुख्य तौर पर देखा जाए तो याद की धूप। जैसे बाबा ने भी कहा, बाबा भी कहते कि बच्चे आप क्या करो, याद की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो, माना जो रोना धोना है अब बंद कर दो। कि हमें कौन मिला है? खुशी का खजाना मिला है, सुख सागर मिला है। फिर दूसरी जो धूप है वो है ज्ञान की धूप, ज्ञान की धूप जिसे हम कहें। तो ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रकाश भी कहा जाता है। लेकिन ये ज्ञान जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं, तब तक ये क्या है? सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को हम जब सुनते हुए भी अनुभूति करते हैं तो भी बड़ा मजा आता है, एक सुख की अनुभूति होती है। लेकिन इसको हम और जीवन में प्रैक्टिकल में लाए तो उसका मजा कुछ और ही होता है। वो ज्ञान माने हमारे साथ 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 चलता है। और तीसरी जो बात है कि परिस्थितियां, हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती है कि हमें वो धूप की महसूसता कराते। तो ये जो धूप है, हमने देखा स्थूल में भी जितना महत्वपूर्ण है मनुष्यात्माओं के लिए, वैसे ये जो धूप है, याद की धूप, ज्ञान की धूप, और ये जो परिस्थितियां हैं, ये हमें कैसे आगे बढ़ाती है, इसमें एक हम अलग अलग प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं। शास्त्रों में भी है तो इतिहास में भी है। तो जैसे हम देखेंगे कि इतिहास में जो गौतम बुद्ध था, उसके बचपन में जो भविष्यवाणी की गई थी कि ये बच्चा आगे जाके वैरागी बनेगा, सन्यासी बनेगा, तो उसके पिता ने तो ठान ली थी कि वो ना बने। इसलिए उसने मुख्य तीन बातों के ऊपर ध्यान दिया था कि इसको तीन बातों से मुझे दूर रखना है, एक तो बुढ़ापा, एक तो बीमारियां, और तीसरा था मृत्यु, इसको किसी की मृत्यु दिखाई ना दे। अब वो बच्चा इतने लाड़कोट में है, अपने महल के अंदर है, लेकिन एक दिन खेलते खेलते उसकी नजर अपने ही पिता के सिर पर, जो सफेद बाल होता है, उस पर जाती है। जैसे आपने बताया था कि बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, तो बड़ी गौर से देख रहा था और उसने उस बाल को हाथ लगाया, निकाला, पिताजी ये क्या है? तो वो बोलते कि अरे, वो तुरंत अभी जाग जाते कि ये क्या हुआ मेरे से, छिपाया क्यों नहीं मैंने इसको। तो फिर वो उसको बताते कि जैसे झाड़ होता है उसके पत्ते होते हैं, वो गिरते हैं और नए आते हैं, उसी तरह ये भी गिर जाएगा और काला नया आ जाएगा। ऐसे बच्चे को झूठ बोल देते हैं और फिर ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं अपने राज्य में, क्या कि बच्चे को बुढ़ापा ना दिखे, इसलिए जिनको बाल है नहीं ना वो ढक के आएंगे सिर, और जिनके सफेद हो रहे हैं वो क्या करेंगे, उसको डाई करेंगे। माना वो प्रथा कब से शुरू हुई है तो देखो सफेद बाल होना मना कहते कि बूढ़ा, बूढ़ापा अलग चीज है, लेकिन शिव बाबा हमें यहाँ स्मृति दिलाते हैं बुढ़ापे की नहीं, लेकिन पूर्वज हो, पूर्वज हो। पूर्वज शब्द बहुत ही ऊंचा शब्द है। देवी देवताओं को भी पूर्वज नहीं कहा जाता, देवी देवताओं पूज्य है। दादी जानकी ने इसकी परिभाषा बताई पूर्वज की, कि देवी देवताएं पूज्य तो है लेकिन पूर्वज उनसे भी आगे है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट शिव बाबा की संतान है, डायरेक्ट ईश्वर की हम संतान है। हमारे पास आदि मध्य अंत का जो नॉलेज है उसके आधार पर हम पूर्वज हैं। हम जो करते हैं उसकी लहर कैसे पूरे वंशावली तक पहुंचती है। तो ज्ञान की बातें हम रोज सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती है, जो हमारे हमें खुद को आगे बढ़ने के लिए जो होती है उसको हम अप्लाई करते जाते हैं, लेकिन हर बात को हम अप्लाई नहीं करते हैं। मानो जैसे मुझे याद है कि हर बात की अनुभूति, जैसे मनुष्य दुख की अनुभूति करते हैं, वैसे हम यहाँ आकर बाबा के सामने बैठते हैं तो सुख की फीलिंग में आते हैं। तो बाबा हर बार मुरली में बताते थे, पूरी मुरली क्रोध पर चलती थी, तो मैं बाबा से बात करता था, बाबा मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, तो ये मुरली तो मेरे लिए थी ही नहीं। लेकिन बाबा ने जैसे कि आगे आगे बताया कि बच्चे रोना माना ही क्या है, क्रोध का एक रूप है। तो ये जब हमें रियलाइज बातें होती है, सिर्फ कभी कभी ज्ञान को हम तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तो उसके ऊपर हम मनन चिंतन जब करते हैं तब वो ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। और कभी कभी हम जब तुरंत उस बात को मान लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं, तब वो क्या हो जाती है, वो बात पक्की हो जाती है। वैसे हर बात को तुरंत हाँ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उसको भी क्या कहेंगे, फिर अंधश्रद्धा कहेंगे। एक तो होता है कि प्रैक्टिकल में उस बात का अनुभव करना या उस बात को रियलाइज करना। अभी हमने क्रोध की अनुभूति देख ली, अब हम देखते हैं जो करंट इश्यू पूरे भारत भर में चल रहा है, कि बाबा से तो हम सुनते आ रहे हैं, जब से हमने ज्ञान लिया हम साकार मुरली में वो बात बार बार आती रहती है कि किसी की दबी रहे धूल में, किसी की राजा खा जाए, किसी की चोर लूटे। अब ये सुना बहुत अच्छा लगा और दूसरों को भी सुना दिया, लेकिन अभी ये समय सुनाने का नहीं है। अगर ये महावाक्य हम किसी के सामने जाकर सुनाए बाहर जाके तो मार खानी पड़ेगी, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसको ही उस बात का पता चलता है। इसलिए अब हम मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण जो देखा है प्रैक्टिकल वो सुनाना चाहूंगा कि एक हमारे सेंटर में माता जी थी, बहुत ही एक अलग ही पर्सनैलिटी थी, जिन जो सेंटर से तो दूर रहते थे लेकिन उनमें एक विशेषता थी कि ड्रेस इतना परफेक्ट था कि वो टीचर को भी, हमारे टीचर को भी वो पीछे छोड़ दे, अगर वो रास्ते से चले तो सब कहे कि ये देखो ओम शांति वाले जा रहे। माना उनका ड्रेस ही क्या करता था, सेवा करता था। और बहुत बंधन वाली भी वो आत्मा थी, और वो कैसे बाबा से मदद लेके बंधन मुक्त भी बनी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो कहीं जा रहे थे तो एक बाइक सवार ने उनकी चेन खींच ली, चेन चोरी हो गई। अब उनके पास ड्रामा का ज्ञान तो था, क्योंकि ज्ञान में वो भी बुजुर्ग हो चुके थे, बाल सफेद हो चुके थे, ज्ञान की बात है, तो वो बिल्कुल मजबूत रही कि ये मेरा था और ये मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट होगा, इस वजह से वो भाई लेके गया। लेकिन अब जो घर वाले हैं, जो ज्ञान में नहीं है, वो लोग तो परेशान हो गए, उन्होंने पुलिस केस किया, सब बातें की, उन्होंने अपने बेटे को भी समझाया कि जाने दो, गया ना गया, वो मेरा था, मेरी मेहनत का था, वो चला गया। फिर माता जी रेगुलर सेंटर पर भी मुरली के लिए भी आती रही, एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, अभी वो सेंटर से काफी दूर रहते थे तो सेंटर में किसी को पता ही नहीं था कि उनके साथ ऐसे हुआ है, और ना ही उन्होंने बहन जी को बताया। और फिर दो दिन के बाद वही महावाक्य साकार मुरली में रिपीट हो गए कि किसी की दबी रहे धूल में, किसी की राजा खा जाए, किसी की चोर लूट। और बहन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया। अभी क्या करे, अभी इतना जो उन्होंने अपने अंदर समा के रखा था उस बात को, तो वो अभी बाहर निकल गई। अभी वो महावाक्य शिव बाबा के यही वो माता जी भूल गई, और क्या हो गया फिर, बहन जी से अनबन परिवार से, मैं बाबा को तो नहीं छोड़ूंगी, रोज मुरली क्लास में आना तो है, लेकिन पूरा एकदम एक रौद्र रूप धारण करके बैठना है। तो वातावरण जैसे कि भारी बन गया, इतना भारी वातावरण बन गया कि जो मैं देख रहा था प्रैक्टिकल, कि गलती तो किसी की है नहीं, लेकिन और बाद में कुछ दिन के बाद उस चोर का पता भी चला, उनको वो चैन वापिस मिल भी गई, लेकिन इतना सारा ज्ञान हमारे पास पहले से ही होते हुए ये बात पहले क्लियर क्यों नहीं हुई, इतना समय जाने के बाद क्यों क्लियर हुई, क्योंकि उस ज्ञान को अंदर से रियलाइज किया ही नहीं। लेकिन छोटी छोटी बातें होती है जो सिर्फ बुजुर्ग बूढ़ा होने से ही नहीं, लेकिन छोटों को भी आगे बढ़ा देती है। तो ऐसे ही एक राज्य में राजा क्या करता है कि अपने छोटे बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को अपने साथ अपनी न्याय दान जहाँ होता है उसके अपने साथ लेके जाता है न्यायपालिका में। और एक किसान आता है और उसके साथ एक व्यापारी होता है, तो किसान बोलता है कि मैंने जो मेरे ऊपर कर्जा था इसने तो वो ले लिया है, और वो जो व्यापारी होता है वो बोलता है कि नहीं, इसने मुझे मेरा जो कर्जा है वापस नहीं लौटाया है। तो ये बात राजा के सामने आ जाती है। अभी सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, आखिर कौन सत्य है, इसकी पहचान कैसे करें। तो फिर वो किसान जो है उसको पहले अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो किसान बताता है कि हाँ, मैंने इससे व्यापारी से कुछ कर्जा लिया था, लेकिन इस साल बारिश हुई नहीं है तो मैं इसका जो कर्जा है नहीं चुका पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो थोड़ा धन बचा है जिसके ऊपर मैं अपने परिवार का 1 साल गुजारा करूंगा, और अगले साल उस बीज को बोने के लिए मैं क्या कर रहा था, उसको तेल लगा करके धूप में सुखा रहा था उन दानों को। तो उसी समय ये व्यापारी आया और मेरे पास जो भी सिक्के थे मैंने उसको दे दिए, और जो मेरा बचा हुआ कर्जा है मैं उसको वापस देने वाला ही था, लेकिन इसने तो मेरे से वो खींच लिया है और वो और मांग रहा है। तो अभी सच कौन है और झूठ कौन है ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये बात सिर्फ दोनों में ही हुई थी, वहां कोई तीसरा था ही नहीं। तो राजकुमार जो होता है, जो अभी अभी गुरुकुल में पढ़ाई पढ़ ही रहा है, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं इस बात का हल निकालता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो उस व्यापारी से वो क्या करता है, उसकी सिक्कों की पोटली लेता है, उसमें से सिक्के बाहर निकालता है और किसान को पूछता है, ये सचमुच आपके ही है, वो बोलता है हाँ मेरे ही है। वो उन सिक्कों को लेकर के पानी में डाल देता है और उस पानी के ऊपर छोटी छोटी तेल की जो बूंदे है वो तैरने लगती है, और वो बच्चा बताता है कि ये सिक्के किसान के हैं जो इस व्यापारी ने खींच लिए थे। माना नॉलेजफुल तो वहां सभी बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन उस बच्चे को गुरुकुल में उस शिक्षा दी गई थी, वो नॉलेज दिया गया था कि जिसको उस बच्चे ने तुरंत अपने जीवन में अप्लाई किया और वो क्या बन गया, न्यायदाता बन गया। तो ये जो ज्ञान की धूप है हमें बहुत ही कम समय में क्या बना देती है, बुजुर्ग बना देती है, अनुभवी बना देती है। बुजुर्ग मैंने देखा है कि बहुत ही साक्षी होते हैं, बहुत जल्दी हलचल में नहीं आते, जैसे कि यंग लोग होते हैं, कोई भी बात देख लेते हैं तो कैसे उनके हाव भाव देखो आप कैसे होते हैं, हाउ स्वीट, वेरी नाइस, ये सब बातें बुजुर्गों में होते नहीं, वो उनको सब पता होता है। हाँ, बड़े बड़े पद पर भी जो लोग जाते हैं वो अनुभवी ही होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, कि जिनके बाल लगभग सफेद हो गए, उनमें ये सब बातें नहीं होती। मैंने देखा अगर मच्छर भी काट रहे हैं ना, अगर मच्छर भी काट रहा है तो यंग लोग कितने तुरंत हलचल में आ जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग जैसे कि उनको कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल मन बिल्कुल, हाँ मैच्योर, सॉरी, हाँ बुजुर्ग शब्द, बूढ़ा शब्द तो बाहर बाहर के लोगों के लिए होता है, क्योंकि सिर्फ बाल सफेद होने से हम मैच्योर नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो भेड़ के बच्चे के भी बाल सफेद ही होते हैं, उसको तो हम बुजुर्ग नहीं कह सकते, हाँ, देह की मैच्योरिटी। तो मैं अपने आप को पूछ रहा था कि सचमुच मैं कितना मैच्योर बना हूँ ज्ञान की हर पॉइंट को, कि बाबा तो रोज नई 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 बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से की है, बाबा की जो 5 स्वरूप की ड्रिल है, बस हम टिक 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 जैसे कमेंट्री चल रही है, लेकिन सचमुच कमेंट्री के ऊपर हम वो अनुभूति कितना कर रहे हैं, और फिर अगर हम अनुभूति हुई है तो हमें वो कमेंट्री दोबारा सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, जब वो अनुभव बन गया तो वो मेरी बात बन गई। अभी हम देखेंगे कि प्यार की अनुभूति, प्यार, प्यार में भी अगर देखा जाए तो मैं प्यार के सागर की संतान हूँ, और आप भी सभी कौन है, उस प्यार के सागर की संतान है। अभी हम इस प्यार को लिक्विड रूप में देखेंगे, है ना, जब प्यार बहुत आता है तो क्या हो जाता है, बहता है ना आंसुओं के रूप से, तो ये जो प्यार है, दुख हो या सुख हो, ये तो भावनाओं की बात है, आंसू निकलना, तो इस प्यार को आज हम लिक्विड रूप में देखेंगे कि शिव बाबा प्यार का सागर है, और मैं प्यार के सागर में अपनी घाघर भर लिया है, बिल्कुल ओतप्रोत है, अभी इसमें कुछ जगह ही नहीं है, एक ड्रॉप भी उसमें आएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, और आप भी प्यार के सागर की संतान है, आप भी आपकी घाघर भर लो, आपको टाइम देते भर लो, कि शिव बाबा प्यार का सागर है, और इस प्यार के सागर में मैं अपनी घाघर को डुबो के बाहर निकाला है, अब नहीं बाहर निकाला है अभी, और आप सामने वाली घाघर को भी देख लो, ये भी फुल है, मैं भी फुल हूँ। अभी हमें कोई, हम प्यार से भरपूर बन गए हैं, अभी हमें अपेक्षा नहीं है किसी से कि कोई मुझे प्यार दे, और अभी मुझे, आप मेरे सामने आए हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी भी घाघर फुल है, आपको भी मुझे प्यार देने की तो आवश्यकता नहीं है, आपके पास भी है, यहाँ भी गुलाब जामुन है, वहाँ भी गुलाब जाम है, फुल है, अपेक्षा नहीं है न मुझे न आपको, लेकिन तो भी जब दोनों आत्माएं प्यार से भरपूर है वो आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, उनकी ओम शांति कैसी होगी, उनकी ओम शांति कैसे होगी, अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी देख ले तो उसको भी क्या अनुभूति होगी, बात है अनुभव की, बात है हम कितने ब्राह्मण जीवन में कितने अनुभवी बने हैं, उसको कितना रियलाइज किया है, अगर तीसरा कोई अज्ञानी हमें देख ले तो उसको क्या लगेगा, वो भी प्यार से भरपूर हो जाएगा, वो फ्लो उधर जाएगा, हमें एक दूसरे से चाहिए नहीं है, लेकिन हमारे नजरों से वो पता चलेगा, वो मगरूरी नहीं होंगे, हमारे नयनों से वो प्यार हमारे वाइब्रेशन से वो प्यार जड़ प्रकृति के तत्व भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। पशु पंछी भी क्या करेंगे, उस प्यार को अनुभव करेंगे। इसलिए एक उदाहरण है कि एक सन्यासी क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, और एक साधारण मनुष्य जाके उसको पूछता है कि भाई तुम तो सन्यासी हो और क्यों पशु को मार रहे है इतने भगवे। उसने कहा कि मैं शिकारी हूँ, सन्यासी नहीं हूँ। तो फिर ये भगवा चोला क्यों धारण किया है, क्यों? क्योंकि वो उस भगवे चोले से उन पशु पंछियों को भी क्या करना चाहता है, भ्रमित करना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है। तो हमने भी सफेद वस्त्र तो धारण किए है, बैच लगाया है, लेकिन जो रियल नॉलेज, परमात्म ज्ञान, जो इतने अच्छे अच्छे बिंदु है, बस उसको यहाँ तक कंठ कर लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसकी प्रैक्टिकल जीवन में कुछ अनुभूति ही नहीं है। तो वो जीवन क्या है, रूखा सूखा है। वो जीवन में हाँ शिकारी आएगा और हम पंछी, वो बात है कि पंछियों की, कि हाँ हम पंछी तो बने हैं, उमंग उत्साह तो है, लेकिन माया तो बैठी है उमंग उत्साह को कम करने के लिए। तो ज्ञान में भी हम देखते हैं कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो क्या है, हाँ सॉरी, जो बड़े हैं, मैच्योर हैं, उनकी हम छोटों से तो क्या होती है, बहुत अपेक्षाएं होती है, हमारे ऊपर बहुत अपेक्षाएं होती है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मेरी एग्जाम खत्म हो रही थी और मैं भी बाहर था, भाई भी, छोटा भाई भी बाहर था। तो मैंने एक प्लान बनाया कि इस दिवाली क्या करेंगे, हम चारों भी जो है मधुबन में जाएंगे सेवा के लिए। तो मैंने प्लान बनाया और उस अनुसार जैसा जैसा जिसको जैसे छुट्टी मिलती गई, वैसे वैसे मधुबन पहुंच गए, मम्मी पापा आ गए, छोटा भाई भी आ गया। लेकिन अभी मेरा प्रैक्टिकल का एग्जाम बाकी था और उसका ना डेट फिक्स नहीं था कि मेरा प्रैक्टिकल कौन सी डेट को होगा। और वो प्रैक्टिकल हुआ और जैसे ही मैं फोन स्विच ऑन किया तो फोन आया हमारी जोन इंचार्ज का। अभी जैसे ही फोन आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भंजी का फोन। जैसे ही मैंने उठाया, भंजी ने कहा, कमलेश भाई कहाँ हो, एग्जाम हुआ? मैंने कहा अभी हुआ है, अभी एग्जाम हॉल के बाहर आया। तो उन्होंने कहा तुरंत अभी आप क्या करो, 5 की गाड़ी से इधर पहुंच जाओ, जहाँ सेवा स्थान था, जहाँ पर पब्लिक प्रोग्राम होने वाला था। तो मैंने कहा जी हाँ जी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दिवाली तो अभी टाइम है, तो आप यहाँ से जाना, मैं भी आऊंगी आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, और तुरंत मैंने हाजी कर दिया, क्योंकि जब बड़े बोलते हैं तो खुशी भी होती है, उमंग उत्साह, और हम और मैंने हाँ कर दिया। लेकिन जब मैं अपने रूम में आया तो वो जो भाई था उसको तो खाना बनाना नहीं आता था। अभी मैं तो तुरंत जा रहा हूँ, वो तो परेशान हो गया कि कमलेश भाई आप तो मधुबन जाने वाले हो, ऐसा नहीं करो, अभी आप कहाँ भाग रहे हो, आप नहीं जाओ। तो वो क्या करने लगा, मैं जो बैग भर रहा था ना उसमें पानी डालने लगा कि ये जाए नहीं। तो तुरंत मेरे मुख से निकला कि अरे गुरु का बुलावा, काल का बुलावा समझते नहीं हो, पाप लगेगा। तो वो भी रुक गया, मैंने उसको भी थोड़ी शॉक लगा कि ये कितना उमंग उत्साह में है। और जैसे ही मैं उमंग उत्साह के साथ सेवा स्थान पर पहुंचा, तो वहां जाते ही क्या हुआ पता है कि जोन इंचार्ज, वो तो मुझे जानते थे, लेकिन जिस सेंटर पर मैं पहुंचा था वो बहने मुझे नहीं जानती थी। उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया, खोदा पहाड़ निकला कि बंजी जो दिन भर बता रही थी कि कमलेश भाई आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनको लगा कि ये कमलेश भाई कोई बड़ा होगा, देखा तो इतना सा कमलेश भाई, अब ये क्या करेगा। लेकिन देखो हमारे उमंग उत्साह को कैसे ब्रेक लगाने के लिए माया मौसी तैयार ही होती है। नहीं लगी ब्रेक, मुझे लगी नहीं, लेकिन देखो हम अपने सारे प्लान को बड़ों के आगे जब एक सेकंड में स्वाहा करते हैं तो उसका मजा, उसका जादू कुछ और ही होता है। जो मैंने एक मास से तैयारी चल रही थी कि दिवाली में मधुबन में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक सेकंड में बड़ों के आगे जब हम सरेंडर हो जाते, प्रैक्टिकल जो अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे कोई फीलिंग नहीं आई कि मैं मधुबन नहीं गया हूँ या अपने लौकिक घर नहीं गया हूँ या मैं अलग ही स्थान पर पहुंच गया हूँ, जैसे कि त्रिशंकु बन गया था। ये लोग मुझे इधर बुला रहे थे, मधुबन से फोन आ रहे कि नहीं कोई बात नहीं, आप बाद में जाना, उनके साथ ही तो रहते हो, सेवा करते हो। लेकिन जब बड़ों की आज्ञा का जब हम तुरंत पालन करते हैं ना, तो उसमें सुख कुछ और ही होता है। तो वो जो सेवाएं करने का मुझे चांस मिला, और वो जो स्थिति थी, इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल अनुभव करना, और जब हम उसमें प्रैक्टिकल जीते हैं, अतीन्द्रिय सुख की जो अनुभूति थी वो मैंने की, कि जो एक मास लगभग मैं वहां रहा, लेकिन इतना अच्छा बाबा ने मुझे रखा, जो ईश्वरीय पालना जो कहते हैं, वो ईश्वरीय पालना का अनुभव तो इन शब्दों में तो वर्णन नहीं किया जा सकता, उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। देखो इस एक सेकंड की भी बातें होती है, कुछ थोड़े समय की बातें भी होती है, वो याद भी आता है तो मन फिर से उन अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में लग जाता है। लेकिन अब तो है ही हम बाबा की गोदी में, है ही मधुबन में, तो अब कितना हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहे हैं। हर सेकंड मेरा दूसरों को भी सुखदायी, और खुद भी मैं कितना उसके प्रैक्टिकल में गया हूँ। अभी देखो हम इस शरीर में है इसलिए ये सब अनुभूति कर रहे हैं, इस शरीर में है इसलिए ये अनुभूति कर रहे हैं। अब ये आत्मा इस शरीर में नहीं है तो भी अनुभूति करती है, तो भी उसको बातें चाहिए कि जो बातें देने के लिए शिव बाबा आया है। कि जैसे हमारी बात चल रही थी प्यार की, प्यार सिर्फ हम आत्मा इस शरीर में है, हम आत्माओं को ही चाहिए या औरों को भी चाहिए? तो एक कहानी बता के मैं बंद करूंगा, कि जैसे कि आत्मा शरीर में नहीं है तो भी उसको प्यार चाहिए, अंतमति सुगति जैसे कहते हैं, कि हम शरीर जब छोड़ते हैं, जिस आयु में छोड़ते हैं, बूढ़ा होके छोड़ते हैं या बचपन में ही छोड़ देते, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। सॉरी मैं चोर तो एक व्यक्ति होता है, एक परिवार होता है कि उनका कहीं ट्रांसफर हो जाता है किस वजह से, और वो जा करके उस स्थान पर रहने लगते हैं, और उनका छोटा बच्चा होता है, और ट्यूशन के लिए रात से उसको उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो क्या होता है कि उस रास्ते में उसको बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भाई तुम उधर से जाओ, उधर लाइट होती है ना, इधर से नहीं जाना। तो बच्चे तो साइंटिस्ट होते ही है, तो क्यों नहीं जाना है, उधर भूत है, तो उसको भूत देखना होता है, और उस अंधेरे रास्ते से उस मकान के पास जाता ही है। तो उसमें उस बच्चे को सचमुच आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो डरता नहीं है, वो घर जाता है, फिर अपने पिता को लेके आता है, पिताजी को भी वो आवाज सुनाई देती है, बच्चे की रोने की आवाज, तो वो तो डर जाते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड डॉक्टर के साथ आते हैं, तो वो डॉक्टर भी डर जाते हैं कि ये क्या है, बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो वो बच्चा उनका बीमार हो जाता है कि ये क्यों रोने की आवाज आ रही है। तो उसकी माँ भी उसके साथ उस गिरे हुए मकान में अंधेरी रात में वहां पहुंचते हैं, तो सचमुच रोने की आवाज आती है, लेकिन वो जो माँ होती है उसका मातृत्व जागृत हो जाता है, और उस आवाज को सुनती है और वही बैठ जाती है, और उस आवाज को की ओर से आवाज देती है कि आओ मेरे लाल, मेरे प्यारे, आ जाओ आ जाओ, और उसको प्यार करती है। वो एक लाइट से आती है, वो जो बच्चे की जो आत्मा होती है वो आती है, उसको वो प्यार करती है, और वो उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अभी इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता कि जो उस बेटे का बाप है, वो सब डॉक्टर है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ। लेकिन देखो जो आत्मा इस शरीर में है नहीं, उनको भी क्या चाहिए, प्यार चाहिए। तो उस प्यार का सागर हमारे साथ है, हम आत्माएं प्यार से भरपूर है, उस प्यार की अनुभूति करते हैं और कराते हैं, यही क्या है, हम ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है। तो हम इन ज्ञान और गुण, शक्तियां, वरदान और वरदान के साथ साथ स्वमान, स्वमान की भी अनुभूति में रहेंगे तो धीरे धीरे बाल सफेद होते जाएंगे। अभी तो तीन हुए हैं और होंगे होते जाएंगे, नहीं तीन ही है। अच्छा, ओम शांति।